नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे, सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू चौकी जाएंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, पांच सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बीएसएफ सेक्टर में होने वाली इस समन्वय बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री के बीकानेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाल हवाई अड्डे पर उनकी अगुवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा उर्वरक की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था, जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉ नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा, 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे। इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है, मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके। इसलिए आम जन से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखाकर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत एससी एसटी लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिने और 26 शावक शामिल है। नए शावकों के नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर प्वाइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले 3 दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।